ये हम राजयोगियों का महामंत्र भी है, नारा भी है। लोग नारे लगाते हैं ना, हमारी मांगे पूरी करो, और हमारा नारा है ओम शांति, हम विश्व में शांति लाकर रहेंगे। कैसे लाएंगे? शांत स्वरूप होकर लाएंगे। तो राजयोगियों की क्रांति है शांति की। दुनिया में बड़े बड़े रेवोल्यूशन हुए हैं, सब में हलचल थी। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी तूफान थे, लेकिन हमारी है फिर शांति की क्रांति। किसी को कुछ नहीं कहना, जिसको बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे तुम अहिंसा के बल से सारे विश्व पर राज्य पा लेते हो, तुम्हारे पास हिंसा का बल नहीं है। तो आज हमको विषय मिला है, बोलिए क्या विषय है? राजयोगी लाइफस्टाइल। ये भी एक ट्रेडमार्क है राजयोगी, एक ऐसा निराला लाइफस्टाइल है जो मैचलेस है, क्योंकि हम गॉड फादर ली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के गॉडली स्टूडेंट्स हैं। तो हमारा चाल चलन, उठना बैठना, खाना बोलना, देखना सोना, सब निराला है। तो वो निराले का निरालापन क्या है, आज उसका विवरण करते हुए जरा वो रसपान करेंगे, अंदर एक स्वमान भर ले, वाहरे मैं राजयोगी। आया स्वमान, जागृत हुआ, सबके अंदर स्वमान जागृत हुआ। जिनकी आंखें बंद हैं खोल दो, बोलें स्वमान। सबने नहीं बोला, वाह रे मैं वहा हूँ, वहा वहा। जो काम बड़े बड़े ऋषि मुनि न कर सके, वेद शास्त्र लाखों पुस्तकें पढ़ते, गुफाओं में तपस्या करते गल गए, और जिसका अंत न पा सके, वो स्वयं हमारे सन्मुख अपना अंत हमें देता है। हमने उसको पाया है, देखा है, जानते हैं उसको, और वो खुद सामने बैठ बैठ करके अपने सारे राज हमारे आगे खोलता है। न सिर्फ अपने राज खोलता है, लेकिन मूर्तिकार बनकर हमारे जीवन की मूर्ति को घड़ रहा है। तो हम घड़ी जा रही है मूर्तियां, तो हमारी बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं। तो राजयोगी लाइफस्टाइल की 15-20 बातों की हमने लिस्ट निकाली है आज, क्या क्या होता है इस लाइफस्टाइल में, तो सब टैली करते जाएंगे कि ये वाले लाइफस्टाइल के सांचे में मैं राजयोगी कितना फिट होता हूँ, आधा फिट हुआ हूँ कि पूरा फिट हुआ हूँ, मेरे फीचर्स पूरे तैयार हो गए हैं या अभी कहीं नाक आदि टूटी है आदि बनी है, कहीं कान बनना रह गया है, कहीं एक आंख बनी है एक छूट गई है, दो बन गई है तीसरी रह गई, चेक करना पड़ेगा ना। तो अभी सारा सांचा हम देखेंगे क्या है, फिर हम साथ साथ चेक करते जाएंगे कितना बन गए कितना बनना बाकी है। सबसे पहला राजयोगी का दिनचर्या का हिस्सा है पहला सवेरे सवेरे भगवान से गुड मॉर्निंग करना। राजयोगी कभी कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो आंख खुलते ही भगवान से बात न करे। तो हमको पहला श्रेष्ठ महान कदम चलना है अमृत वेला 4 बजे से पहले ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलते ही पहला महान संकल्प बाबा गुड मॉर्निंग, और कान से सुनना है अंतर आंख से देखते हुए कि बाबा आ गया और मुझे बड़े प्यार से उत्तर दे रहा है मीठे लाडले बच्चे गुड मॉर्निंग। सवेरे सवेरे पहली मुलाकात हमारी भगवान से होती है। किसी का दिन खराब गुजरता है तो लोग उसे पूछा करते हैं सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा था, और हम सवेरे सवेरे भगवान का मुंह भी देखते हैं और भगवान से बात भी करते हैं। तो सब राजयोगियों को चेक करना है कि मेरा गुड मॉर्निंग रोज होता है। सिर्फ उठना पर्याप्त नहीं है, भले रोज 3 बजे उठ जाते हो और साधारण संकल्पों में रमन करते हो या सुस्ती में समय बिताते हो या पिछले दिन की बातें दोहराते रहते हो, चार्ट में ये पहला पॉइंट होना चाहिए कि सवेरे उठते ही पहला संकल्प क्या आया। स्वाभाविक रूप से पहला संकल्प उठते ही आंख खुलते ही बाबा, या फिर कुछ और था उसके अंदर। तो राजयोगी का उठना भगवान के साथ, राजयोगी सारी दुनिया को ये दावा करते हैं कि हमें भगवान जगाता है, है ना हमारा दावा सबका, और लगभग सभी भाई बहनों का ये अनुभव भी जरूर होगा यदा कदा बाबा जगाने, देखो सारे बोल रहे हैं बाबा जगाने आता ना। जिसको भगवान जगाने आएगा वो पहली बात किससे करेगा, और किससे कर सकता नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हस्ती राजयोगी की सेवा पर उपस्थित है। तो इसलिए पहला लक्षण हमारा लाइफस्टाइल का अमृत वेला कभी मिस नहीं, कभी पहला संकल्प बाबा के अलावा नहीं, कभी अमृत वेला लेट नहीं। बाबा ने मुरलियों में यहाँ तक कहा हुआ है, जो ब्राह्मण बच्चे अमृत वेला मिस करते हैं वो हाफ कास्ट ब्राह्मण है। केवल अमृत वेला मिस करने से आधी कास्ट ही कैंसिल हो गई, आधा ब्राह्मण तो बाकी आधा क्या बचा बोलो ना, आधा शूद्र, क्योंकि ब्राह्मण से पहले क्या थे, शूद्र ही तो थे, तो सोच के देखो ऐसा फोटो जिसका आधा जो हो वो योगी का और आधा बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें, सींग भी लगाओ एक, तो आधा आधा तो ठीक नहीं है ना, पूरा चाहिए। तो राजयोगी पूरा माना, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस अमृत वेला कभी मिस न होता हो, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, बीमारी, थकावट, लेट सोना, या फिर सो कॉल्ड सो मेनी बहानास, बहुत लंबी लिस्ट है हर एक के पास, मच्छर काटा, गर्मी लगी, ये हुआ वो हुआ, अलार्म नहीं सुना, आंख नहीं खुली, फिर हमने सोचा 3:30 हुए हैं, अभी उठते हैं, 4:45 उठ जाएंगे, फिर देखा तो 5 बजे हुए थे, है ना? ये बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो पहला लक्षण राजयोगी का, अमृत वेला, गुड मॉर्निंग, पहली मुलाकात भगवान से विदाउट फेलिंग, 365 डेज इन अ ईयर। दूसरा, राजयोगी लाइफस्टाइल में दूसरा है स्नान का महत्व। नए पुराने मिक्स बैठे हैं, पुरानों को तो मालूम है, नयों को मालूम भी होगा, लेकिन मिक्स हो सकता है इसमें। बाबा ने राजयोगियों के लिए स्नान अनिवार्य निश्चित किया है। 0 डिग्री टेम्परेचर हो या 48 डिग्री टेम्परेचर हो, सवेरे को पहला काम है स्नान करना। हाँ, अमृत वेला हाथ मुंह धोकर के कर सकते हैं, लेकिन अगर शौच जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, 2 नंबर जाते हैं, तो पूरे कपड़े बदल करके स्नान करना अनिवार्य सब्जेक्ट है, ऑप्शनल नहीं। चाहे आप घर में हैं, या ट्रेन में हैं, या धर्मशाला में हैं, या सफर में हैं, जहां कहीं भी हैं, ये हमारी तन की पवित्रता की मर्यादा, लाइफस्टाइल बाबा ने हमें सिखाया हुआ है। टॉयलेट जाते हैं तो वो वाला कपड़ा दोबारा नहीं पहनते, चलो दोबारा नहीं पहना, या किसी दिन हमारे को पेट साफ होने का ख्याल ही नहीं हुआ तो सारा दिन स्नान ही नहीं करे, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। बाबा तो कहते हैं रॉयल लोग होते हैं ना, तो 2 बार स्नान करते हैं, 1 बार तो छोड़ो, 2 बारी स्नान करते हैं। तो सुबह मुरली क्लास में जाने से पहले, अमृत वेला के बाद स्नान करना अनिवार्य है। अमृत वेला ही अगर किसी को स्नान का ख्याल होता है, ये हमारी रॉयल लैंग्वेज है, टॉयलेट जाने को हम बोलते हैं स्नान का ख्याल होता है, तो भी उसको अमृत वेला आने से पहले, फिर मार्जिन लेके उठे, बिफोर टाइम उठे, 3:30 3:15 उठ जाए, तो स्नान करके अमृत वेला आए। अगर ख्याल नहीं होता है तो अमृत वेला ब्रश करके, मुंह धुलाई करके, साफ वस्त्र पहन करके, बेड पर नहीं कहीं और बैठकर किया जा सकता है। ये राजयोगियों के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, या समझिए कंपल्सरी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। ऑप्शनल नहीं है कि चाहे तो वगैरह, हो सके तो, कोई कोई तो ऐसे हमारे अपने बुद्धि के भाई बहने होते हैं जो सेंटर पर आएंगे तो कहेंगे आज तो दीदी हम पूरे कपड़े बदल कर आए, और घर में क्या करते हैं, घर में तो फिर वही वाले दोबारा पहन लेते हैं। नो, यहाँ तक बाबा सिखाया करते थे कि जिन वस्त्रों में रात को आपने नींद की है, नींद तमो प्रधान होती है, उसमें नींद के वाइब्रेशन होते हैं, वो वस्त्र रिपीट नहीं करो। अगले दिन रात्रि को पहनना तो और बात है, लेकिन सुबह को फ्रेश कपड़ा पहना जाना चाहिए और रोज वस्त्र बदली किए जाने चाहिए। तीसरा, राजयोगी लाइफस्टाइल में पेट खराब है, अगर पेट खराब हो जाए, कभी डायरिया हो जाए, तो ऐसे में फिर बिस्तर की चादर अलग डालकर जितनी बार जाना पड़े वस्त्र बदली करें, स्पंज कर लें। समझो सर्दियों का मौसम है और बार बार नहाने से बुखार भी आया हुआ है, तो ऐसे में फिर सिर्फ स्पंज करके किया जा सकता है। उससे भी ज्यादा है, पेशेंट है तो वो पेशेंट की लाइन में आ जाएगा। जिसको रूटीन में ही 3-4 बार होता है तो गर्मियों में तो नहा सकते हैं, सर्दियों में भी गर्म पानी 2 डब्बा डाला कुछ बिगड़ता नहीं है और ही ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता, कुछ बिगड़ता नहीं है। जो बिल्कुल ही सीरियस पेशेंट है उनके लिए फिर अलग बड़ों से छुट्टी ली जा सकती है। ठीक है, वापिस आके स्नान करे, वहां भी मैनेज करने की कोशिश करे। तीसरी बात, राजयोगी वेशभूषा। राजयोगी वेशभूषा में सादे वस्त्र प्रिस्क्राइब्ड हैं, जिसके लिए बाबा कहते हैं ये सफेद ड्रेस आपकी यूनिफॉर्म है। आप कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं तो सफेद वस्त्र पहने, राजयोग की भट्टी है सफेद वस्त्र पहने, जो समर्पित हो गए हैं उनके लिए सफेद वस्त्र अनिवार्य है। लेकिन जो प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं वो आगे पीछे रंगीन कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन उस रंगीन कपड़ों में भी कई दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि हो सके तो हल्के रंगों का प्रयोग करें। बहुत तीखा लाल रंग, काला रंग, फुल ब्लैक ड्रेस, ये तो वैसे भी आसुरी लक्षण है। कलयुग सतयुग में फुल ब्लैक कुछ भी होता नहीं है। बाबा ने यहाँ तक बताया हुआ है कि वहाँ तो रात भी पूरी काली नहीं होती है, चांदनी रात होती है और हीरों की चमक दमक होती है। बाल भी फुल ब्लैक नहीं होते है, गोल्डन ब्राउन होते है। तो इसलिए हम सतयुग में जाने वाली आत्माएं फुल ब्लैक ड्रेस कभी नहीं पहने तो अच्छा है, और हल्के रंगों का प्रयोग करें, पूरा शरीर ढका रहे ऐसे वस्त्रों का प्रयोग करें, क्योंकि कलयुगी आसुरी संप्रदाय में आधे वस्त्र पहनने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जिसमें दृष्टि वृत्ति चंचल और दूषित होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। लेकिन हम राजयोगी आत्माएं पवित्रता के बल से सारी सृष्टि पर दैवी साम्राज्य लाने के लिए कृत संकल्प हैं, इसलिए हम राजयोगी आत्माएं कलयुगी आसुरी संप्रदाय की नकल नहीं कर सकते। हम कीचड़ में कमल समान हैं। हम अगर रंगीन वस्त्र भी पहनते हैं तो शरीर पूरा ढका हुआ होना आवश्यक है, क्योंकि पुरानी चमड़ी को प्रदर्शित नहीं करना है, उसमें विकारों की बदबू रहती है। हाँ, भले आप रंगीन वस्त्र ऑफिस में, काम में, घर में पहने हुए, उसके ऊपर भी अगर आप बैज लगा देते हैं तो कोई मना नहीं है, लेकिन वस्त्र सादगी पूर्ण हो और श्रृंगार का त्याग करें जितना उतना अच्छा है। खास तौर पर माताएं बहने, आजकल तो भाई भी फैशनेबल वस्तुएं ना खरीद करे ना प्रयोग करे, क्योंकि इससे देह अभिमान बढ़ता है, अपना भी और दूसरों का भी आकर्षण भड़कने के चांसेस है। केवल ये सोने का हिरन है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। इसलिए राजयोगी जिसको मूल अभ्यास ही है देह भूल आत्मा समझ, परमात्मा को याद कर, वो देह अभिमान बढ़ाने वाली वस्तुओं का प्रयोग कदापि न करे, जिसके लिए बाबा कई बार कहते देवताएं तो पाउडर क्रीम भी नहीं लगाते है, तो यहाँ भी लगाने की क्या आवश्यकता है। फिर बड़ा खर्च करके ब्रांडेड ड्रेसेस लेकर के आए, फिर ये गहना ये श्रृंगार। बाबा कहते है अभी तुम वनवाह में हो, अभी तुम्हें केवल वैराग में और त्याग में रहना है। तुम सजेंगे सतयुग में, जहाँ तुम्हारे दास दासियाँ तुम्हें सजाएंगे और सबकी दृष्टि वृत्ति महान और पवित्र होगी। अगला पॉइंट है, चौथा है आई थिंक। एक शब्द न पूछो, जितना हमने बोला उसमें सारा कुछ आ गया। श्रृंगार का त्याग करें, उसमें चाहे मेहंदी हो, चाहे पाउडर हो, चाहे क्रीम हो, जूता हो, चप्पल हो, शर्ट हो, कुर्ता हो, पजामा हो, जिसमें भी सजावट का भान हो उसका त्याग करें। चाहे भाई हो या बहने हो, कोई एक पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं लिया जा सकता है। चौथी बात, राजयोगी लाइफस्टाइल में बैज अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें बाबा कहते हैं ये तुम्हारे मेडल हैं। राजयोगी आत्माओं को ये मेडल लगाने में गौरव का अनुभव होना चाहिए, न कि शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए ना लगाने में, न कि लगाने में, क्योंकि हमने क्या पाप किया है जो ना लगाए। अगर भगवान ने दिया है ये मेडल, ये गौरव हमें प्रदान किया है, तो बड़ी शान से सबके बीच लगा कर जाए। लोग थोड़ा कभी कमेंट करेंगे, कहीं क्रिटिसाइज करेंगे, फिर सरेंडर कर जाएंगे। हमारे बैज के ऊपर जो पट्टी लगी है जिस पर लिखा है ओम शांति, तो सारे विश्व में बाबा का ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय ओम शांति वालों के नाम से प्रसिद्ध होता जा रहा है। और ये ओम शांति वाला मेडल लगा करके हम गुस्सा करना चाहें तो भी, होटल में जाकर खाना खाने चाहें, रेड लाइट क्रॉस करने चाहें, रिश्वत लेने चाहें, बिजनेस में हेरा फेरी करने चाहें, एक मेडल 100 पापों से बचाता है, एक मेडल। इसलिए राजयोगी लाइफस्टाइल ये कहता है कि इस मेडल को हमेशा कंधे पर लगा कर रखें। लेकिन सेंटर्स पर कुछ विधि विधान है कि 8 मास 1 वर्ष पवित्रता की धारणा पालन करते हुए हो गया हो, उसके बाद बाइज्जत निमित्त दीदी से ये बैज अपने कंधे पर लगवाना चाहिए। ऐसे नई मर्जी से खरीदा और लगाया, हाँ पुराने हो गए है, बैज पुराना टूट गया, नया खरीद सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम बाइज्जत अपने निमित्त दीदी से ही हमें अवश्य लगवाना चाहिए। अगला हमारा लाइफस्टाइल का जो सिस्टम है वो है स्टडी। राजयोगी लाइफस्टाइल में स्टडी, अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम गॉडली यूनिवर्सिटी के गॉडली स्टूडेंट्स हैं। कोई भी ऐसा ब्राह्मण या राजयोगी नहीं माना जाएगा जो 15 दिन हफ्ते बाद मुरली सुनता या पढ़ता हो। राजयोगी के लिए अनिवार्य है प्रतिदिन नाश्ते से पहले मुरली पढ़ना अथवा सुनना, फिर उसको लिखना, दिन में रिवाइज करना, होमवर्क लेना, होमवर्क करना, ये हमारा महत्वपूर्ण कदम है एक अच्छा राजयोगी बनने के लिए। क्योंकि जैसे दिया जलता है तो तेल चाहिए, ऐसे ही अगर मन की लगन परमात्मा के साथ जोड़नी है, बाबा को अपने दिल में बसाना है, उसके लिए बाबा की पढ़ाई पढ़ करके उसके टिप्स लेना। पढ़ाई में बाबा पढ़ा रहे हैं, जैसे कल भी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी ने बताया ज्ञान चिता से योग अग्नि, तो जितना ये ज्ञान की चिता जलेगी, ज्ञान का घृत अंदर डलेगा, उतना योग ज्वाला प्रज्वलित भी रहेगी और अखंड भी रहेगी। तो मुरली के पॉइंट्स पर बार बार अटेंशन देना, शेयर करना, पढ़ना, सुनना, सुनाना, शेयर करना, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण वही होता है जिसके बगल में पोथी होती है। तो हमारी पोथी है हमारी मुरली। कल भी भाई साहब ने कहा जेब में रखो, कितनी बार पढ़ो, कितनी बार पढ़ो, वो खुद पढ़ते है। घड़ी घड़ी निकाला, एक पॉइंट, बाबा ने ये बोला, बाबा ने आज बोला, मुख में मोहल्ला डाल दो, वापस डाल दिया। फिर बाबा ने आज बोला, बच्चे शांति स्वधर्म में रहो, फिर उसके अभ्यास में जाओ। ये हमारी जीवन की कुंजी है, गाइड है फाइनल एग्जाम को पास करने के लिए। और नाश्ते से पहले, कल वो भी उन्होंने स्पष्ट किया, भले कोई कारणों से किसी को शाम को मजबूरी क्लास करना पड़ता है तो भी अमृत वेला करके पिछले दिन की मुरली ही सही, उसके पॉइंट्स लेकर के यहाँ उसके अभ्यास में मगन रहें, जो बाबा ने मुझे कहा। मुरली है भगवान की मुझ आत्मा से बातचीत, मुझ आत्मा के लिए दिशा निर्देश, गाइड लाइन्स, जो कदम कदम मुझे लेनी है। सब पक्का करें, जिसकी मुरली मिस होती है वो पक्का समझ लें कि मुरली मिस होती नहीं, हम करते हैं, हमारा इंटरेस्ट कम है, हम फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं। अगला सेंटेंस तो नहीं बोलो ना, वो अभी पक्का करके जाएंगे, हम फुल कास्ट ब्राह्मण हैं, हम फुल कास्ट ब्राह्मण, मुरली मिस कर नहीं सकते। भोजन मिस कर सकते हैं, भोजन के बिना हम चार दिन भी जिंदा रह सकते हैं, मुरली के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। छठा, राजयोगी ब्रह्मा भोजन खाते हैं, भोलानाथ के भंडारे से खाते हैं। ब्रह्मा भोजन हमारे तन और मन दोनों को पवित्र करता है। खून, मांस, हड्डियां, इनका निर्माण भोजन से होता है। तो ये तीनों ब्रह्मा भोजन से पवित्र होते हैं। तो एक राजयोगी को ब्रह्मा भोजन बनाना भी आना चाहिए, भोग लगाना भी आना चाहिए, खाना भी आना चाहिए, खिलाना भी आना चाहिए। चारों की विधि है। ब्रह्मा भोजन सिर्फ उसी को नहीं कहते जो सेंटर पर 150-500 के लिए इकट्ठा बने, लेकिन राजयोगी जब भी खाता है, जब भी खाता है ब्रह्मा भोजन ही खाता है, या जब जब सेंटर पर मिलता है वही ब्रह्मा भोजन होता है, नहीं, राजयोगी केवल ब्रह्मा भोजन ही खाता है, क्योंकि राजयोगी का टाइटल ही है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा की संतान। तो किसका दिया भोजन खाएंगे? जिसकी संतान है ना, उसी का दिया खाते हैं। तो हम ब्रह्मा के भंडारे वाला भोजन खाते हैं, तो उस भोजन के लिए एक फॉर्मूला है, ब्रह्मा भोजन का फॉर्मूला है, पवित्र के हाथ का बना हुआ शुद्ध शाकाहारी योग युक्त भोग लगा हुआ भोजन ही ब्रह्मा भोजन होता है। पवित्र, जो ब्रह्मचर्य का पालन करे, पवित्र के हाथ का बना हुआ शुद्ध शाकाहारी योग युक्त भोग लगाया गया, भगवान को भोग लगाया गया भोजन ही ब्रह्मा भोजन होता है। तो हर एक राजयोगी को ये पूरा चार टिप्स का फॉर्मूला पूरा करके ही भोजन स्वीकार करना है। उसमें पांचवा टिप है बाबा की याद में प्रसाद रूप में स्वीकार किया गया भोजन, क्योंकि योगी जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। शुद्ध मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो बोलिए, नहीं मिलेगा तो जो कह रहे नहीं खाएंगे वाद खड़ा करो, सच में नहीं शुद्ध मिलेगा तो नहीं खाएंगे। सब क्यों नहीं हाथ खड़ा कर रहे, बाकी खा जाएंगे अशुद्ध। हाँ, फ्रूट भी तो शुद्ध भोजन में आता है, जैन थाली खा के आ जाएंगे क्या? बिना प्याज लहसुन वाली होटल पे जैन थाली मिलती है आजकल, जिसमें मांस मीट की कड़छी भी पता नहीं लगा देते हो, कौन जानता है। जैन थाली मिलती है, ब्रेड मिलता है, बिस्किट मिलता है, मक्खन मिलता है, पनीर मिलता है, कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, सब खा पी जाते हैं, वो राजयोगी नहीं है। सुन लो ध्यान से, राजयोगी ब्रह्मचारी के हाथ का खाता है। ये नहीं कि ऑटोमेटिक प्लांट का हमने खा लिया सो व्हाट। कई लोग कहते हैं मशीनें पतित थोड़ी होती है तो मशीन मेड खा लेते हैं, पर मशीन पतित नहीं होती, पर मशीन योग भी तो नहीं लगाती है, मशीन मुरली भी तो नहीं सुनती है, मशीन भोग भी तो नहीं लगाती है, तो वो हम कैसे खा सकते है? देखिए, बिन खाए जल्दी से ये शरीर मरता नहीं है, खा पी के जल्दी मर जाएगा, बिन खाए जल्दी नहीं मरता है। जहाँ कहीं बाहर जाने से मजबूरी आ जाए, पहली बार टिफिन लेके जाओ, दूसरी बार फ्रूट खा लो, तीसरी बार वहीं जाके खुद बना के भोग लगा के दूसरों को भी खिलाओ, सब भाइयों को भी अवश्य कुकिंग अवश्य आनी चाहिए। इतना मोहताज नहीं तो बाहर गए क्या करते, फिर भाभी के हाथ का खा लिया, उसने नहा धो के बना दिया, अरे शरीर तो धो लिया, मन कहाँ धोया? पतित है, भिखारी है, मन के अंदर न मालूम आत्मा के अंदर कितना पतित पना छिपा है। ये जो बाबा ने हमें स्टाइल बना के दिया है, सिस्टम बना के दिया है, करोड़ों अरबों रुपयों से अधिक कीमती है। सभी साथ साथ संकल्प करो कि मैं राजयोगी हूँ तो संपूर्ण हूँ, आधा अधूरा नहीं। वैसे प्याज लहसुन नहीं खाते, कहीं जाना पड़ता तो खाना पड़ता, अरे पड़ता क्या होता, मुंह प्राइवेट है, पड़ता क्या होता, ना घुसाओ इसमें, सिर्फ स्वादों की गुलामी होती है। जहाँ जाओ पेट भर के खा के जाओ, संकल्प को ताला लगा के जाओ, मुंह को ताला लगा के जाओ। सावधान, अन्न की अशुद्धियां आने वाले समय में तंत्र विद्याओं के माध्यम से बड़े बड़े योगियों को भी भ्रष्ट करने की ताकत रखती है। भूत प्रेत अंत का आक्रमण होगा, विनाश काल में इविल सोल्स भटकेंगी, और फिर तांत्रिक लोग किसी को भी अपने इविल सोल्स के प्रभाव में लाने के लिए सबसे कारगर पावरफुल टूल यूज करते हैं, कुछ भी खिलाकर। तो अंत में वो आत्माएं बहुत सुरक्षित रहेंगी, बाबा वतन में उनको शुभी रस पिलाएगा, जिन्होंने अन्न की शुद्धि की मर्यादा दृढ़ता पूर्वक पालन की है। अशुद्ध खाना भी नहीं तो खिलाना भी नहीं। सो ना, ड्रिंक खुद नहीं करते औरों को पिला देते हैं, नॉन वेज खुद नहीं खाते और नो, कहीं मजबूरी है माताओं को, भाई लोग प्याज लहसुन के बिना नहीं मानते है, तो उसमें इतनी ज्यादा बात नहीं है, अगर आप उनको खिला देवे, बाकी दूसरी चीज नहीं। सातवीं बात, राजयोगी के लिए महत्वपूर्ण है बार बार इंटरवल्स में एकांत, एकांतवास। राजयोगी आत्म चिंतन किया करता है, वो अपना दोस्त होता है, अंतर्मुखी होकर अपने से बात करना जानता है, अपना दर्शन करना जानता है। जब तक हम अपने से नहीं मिले हैं, बाबा से मुलाकात कर नहीं सकते। और इस बात में ठहराव के लिए, आत्मिक स्थिति एक टिक अखंड बनाने के लिए बहुत आवश्यक है बार बार अपने लिए कुछ एकांत के पलों को खींच लेना। अमृत वेला और नुमा शाम तो है ही है, जो हमको याद की यात्रा पर रहना होता है, लेकिन उसके अलावा भी कोशिश करना चाहिए एक हफ्ते में एक दिन सुबह से शाम तक बाबा रूम में बैठ जाएं। पूरा दिन न बैठ सके तो आधा दिन बैठ जाएं, 8 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा लॉन्ग सिटिंग। एकांत सिर्फ इतना नहीं, मुरली से पहले 15 मिनट योग, अमृत वेला आधा घंटा, उसमें भी कोई घंटी बजी, कोई आया गया, देहधारी दिखते रहे, जिसमें ना कोई दिखे न किससे बोलूं। वो समय हमें चुरा लेना है जिससे हम एक के अंत में खो जाएं और उस एक को अपना मीत अनुभव करते ही रहें। जो एकांत का अनुभव नहीं करता, वो राजयोग का संपूर्ण अनुभव कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए राजयोगी दिनचर्या में एकांत प्रिस्क्राइब्ड है। इसके लिए बाबा राय देते हैं बार बार एकांत में बैठो। 8वां, कर्म इंद्रिय जीत। राजयोगी कर्म इंद्रिय जीत होता है, और कर्म इंद्रिय जीत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य की पालना। उसके लिए बाबा कहते हैं धरत परिये धर्म न छोड़िए, सितम सहन करने पड़े, कितना विरोध हो, गाली खानी पड़े, लेकिन फिर भी अपनी पवित्रता को कभी भंग न होने दो। ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा मिसाल देते हैं, हैदराबाद सिंध में जब सत्संग स्थापन हुआ, माताओं बहनों पर सितम होने लगे पवित्रता के कारण, वो घरों से भाग कर आने लगी, बाबा के पास शरण लेने लगी, सब तरफ हंगामों का वातावरण हो गया। तो सिंध शहर के कई मुखी लोग, जो लीडिंग अथॉरिटीज थी, वो बाबा के पास आए मीटिंग करने, और बाबा को कहने लगे, दादा आपका सत्संग बहुत अच्छा है, हमें आपके सत्संग से कोई ऐतराज नहीं, माताएं बहनें भी भले आए, हम ऐतराज नहीं करते है, लेकिन ये जो आपने पाबंदी लगाई है ना, इसको हटा लो। तब मालूम है ब्रह्मा बाबा ने क्या उत्तर दिया, ये मेरा आदेश नहीं है, मैं भी नहीं जानता हूँ, वो आता है मेरे द्वारा कह के चला जाता है। उन लोगों को संतुष्टि नहीं हुई इस उत्तर से, क्योंकि वो लोग क्या जाने कि कौन आता है और कौन कह करके चला जाता है। वो तो यही कहने लगे कि ये दादा जो है कल तक अच्छा व्यापारी था, सत्संगी था, अब कहीं से काला जादू सीख के आया है, जो इसके पास जाता है ऐसा जादू लगाता है वो कहीं का नहीं रहता। अरे इतने घोर कलयुग में, महान पाप के साम्राज्य में, कोई घर गृहस्थ में रहते ब्रह्मचर्य का पालन करे तो कलयुगी मनुष्यों के हिसाब से तो जादू ही तो है, लेकिन हम सबको ये जादू लग गया है। पर ध्यान रहे, 100% लगाना, मार्जिनल नहीं, आधा अधूरा नहीं। ऐसे नहीं रहते तो पवित्र है, पर व्यवहार पति और पत्नी वाला करते हैं। राजयोगी लाइफस्टाइल में पति पत्नी नहीं होता है, क्या होता है, आत्मा भाई भाई, शरीर रूप से मिले तो भाई बहन। तो जो युगल भी चलते हैं ज्ञान में, तो ध्यान दे, माताएं युगल को भाई की नजर से देखती है, वैसा व्यवहार करती हैं। भाई लोग युगल को बहन की नजर से देखते हैं या गड़बड़ करते हैं? और कुछ नहीं तो हुक्म चलाते हैं, चाय नहीं बनाई अभी तक, क्या कर रही हो? ये लैंग्वेज भी क्या होती है? वाय दिस अथॉरिटी, अधिकारों का भी त्याग करना होगा। पति और पत्नी शब्दों में जो अधिकार है उल्टे वाले, उसका भी त्याग करना, देभान का त्याग होता है। ये आपका बच्चा ये ऐसे करता है वैसे करता है, नहीं, ना पति न पत्नी, बच्चे भी बाबा के, आत्मा आत्मा, भाई भाई हो जाते हैं। तो ये तन की पवित्रता, कर्म इंद्रिय जीत में ब्रह्मचर्य, आँखों का नियंत्रण, ब्रह्मचर्य की धारणा ये कहती है कि आँखों को कंट्रोल करो। कोई पवित्र रहते हैं, फिल्में देखते हैं, सीरियल देखते हैं, सज धज के दूसरों की शादियों में जाते हैं। अभी जाओ जहाँ जाना पड़े, पर सज धज का क्या मतलब है? उनका बाजा बज रहा है, निमित्त मात्र निभाने अर्थ जाओ, और कुछ नहीं। अपने बच्चों की शादियों में लड्डू बांटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, सेंटर के भाई बहनों को बुलाते हैं, मेरे बेटे की शादी है, बहू बड़ी अच्छी मिली है, आना दीदी, आप भी आना, ब्रह्मा भोजन कराना। अपने लिए मारे खाई और अपने बच्चों के बाजे बजा रहे हैं, वो भी निभाने अर्थ ठीक है, लेकिन खुशियों के बाजे बजाने की क्या जरूरत है? वो तो कुएं में गिर रहे हैं, गटर में जा रहे हैं, किसी के गटर में जाने के बाजे बजाए जाते हैं क्या? हाँ, उनका कोई, उनका अगर कोई अरमान है, निभाना पड़ रहा है तो अलग बात है, लेकिन खुद की चॉइस, खुद की चाहना, खुद की तमन्नाएं, खुद की मनोकामनाएं चेक करो, तब कहा जाएगा पूरा कर्म इंद्रिय जीत, अदरवाइज पार्शल है, मार्जिनल है। पवित्रता के आधार पर नए सतयुगी साम्राज्य की स्थापना कर रहे, हमारी युगल रूप की मूर्तियां केवल पवित्रता की अथॉरिटी के कारण से पूजी जा रही है। आज इसी देह में अगर बाबा मुझे नारायण बना दे, क्या नारायण रूप वाली दृष्टि और वृत्ति मेरी रहेगी? मुझे लक्ष्मी बना दे तो वो वाली वृत्ति और दृष्टि मेरी रहेगी? वो हमें बहुत बारीकी से जांच करने की जरूरत है। केवल आंख नहीं, जीभ भी बहुत चलायमान होती है। अशुद्ध छोड़ दिया पर शुद्ध पर भी कई बार ये जीभ ऐसी चंचल होती है कि जरूरत से अधिक खा लेते हैं, कहीं कहीं झूठ बोलकर भी डबल ले लेते हैं, भोग की भी लालच हो जाती है। तो जीभ पर नियंत्रण, आँखों पर नियंत्रण, कानों पर नियंत्रण, ना उल्टा सुनना है, ना अंदर जाने देना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना, तो राजयोगी है कर्म इंद्रिय जीत। इस पर पूरी क्लास हो सकती है, लंबी लिस्ट है जो आप चिंतन करके खुद निकाल सकते हैं। नौवा, राजयोगी कर्मयोगी है। कर्म इंद्रिय जीत के साथ दिनचर्या में कर्म योग का अत्यधिक महत्व है। इसलिए राजयोगी स्टाइल है खुली आंखें, खुली आंखें। आज भी मैंने देखा, 3 मिनट भी सामने आकर के योग में बैठी, हैरानी हुई हमें, आधों की आंखें बंद थी। 2, 4, 8, 10 होंगे जिनकी थोड़ी सुस्ती के कारण बंद थी, लेकिन बाकी आधे योग भी आंखें बंद करके लगा रहे थे। ऐसे वाला, हम कर्म योगी हैं, हमको कर्म की गलतियां, कर्म में होने वाले विकर्म ठीक करने हैं, तो कर्म में बाबा का आवाहन करना होगा, कर्म बाबा को समर्पित करके करना होगा। हम बैठ करके योग अभ्यास इसलिए ही करते हैं कि चलते फिरते कर्म करते भी कर सकें, वरना केवल बैठने वाले योग का उतना महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि गलतियां कर्म में होती है और कर्म में अगर योग आ गया तो विकर्म होना बंद हो जाएगा और विकर्म विनाश की चाल हमारी शुरू हो जाएगी। तो कर्म योगी लाइफस्टाइल है हमारा, हम लोग कर्मचारी नहीं है। ऑफिस में बिजनेस में सिर्फ काम करे, कोई कोई भाई बहने कहते आज इतना काम था बाबा को याद करने का, आज इतना काम था बाबा को याद करने का, और हम दूसरों को अगर ज्ञान सुनाना पड़े ना तो राजयोग क्या है, तो सबको आते हैं ये पॉइंट सुनाने। राजयोग आत्मा और परमात्मा के संबंध का दूसरा नाम है, सुनाते ना। इसमें हम भगवान को जपते नहीं है, हम भगवान को अपना रिश्तेदार बनाते और रिश्तेदार बना करके अपने को आत्मा समझ उससे बातें करते। तो रिश्तेदारों से बातें तो काम करते हुए भी की जा सकती है, इसलिए सावधान। नहीं तो जो भी भाई बहने क्लास कराने आएंगे कहेंगे चंडीगढ़ वालों को भी योग लगाना भी नहीं आता है, आधे जिन्हें आंखें बंद करके बैठते ऐसे वाला योग करते। दृष्टि लेना होता है, नैन से नैन मिलाओ, आत्मा देख परमात्मा को याद कर, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर। तो वो कर्म योगी लाइफस्टाइल है हमारा। कर्म में बाबा को शामिल करना, हर कर्म बाबा को अर्पित करना, हर कर्म से पहले बाबा, मध्य में बाबा, अंत में बाबा, कर्म शुरू करने लगे बाबा को रिपोर्ट करो, बाबा ये करने लगे, हो रहा है बाबा को अर्पित करो, कर लिया फिर रिपोर्ट करो, गलती किया या ठीक किया, उसमें क्रोध शामिल किया या शांति से किया, स्नेह से किया या मजबूरी से किया या थकावट से किया। तो हम कर्म छोड़ नहीं सकते, हम कर्म से भागने वाले नहीं है। कोई कोई कहते दीदी रिटायर हो गए ना हम तो समर्पित हो जाएंगे, खाली रिटायर होकर समर्पित नहीं होना, ये ओल्ड एज होम नहीं है। कोई कोई कहते शादी ना की होती तो हम समर्पित हो जाते, जहां हो वहीं से योगी हो जाओ। कर्म इस राजयोग के मार्ग में विघ्न नहीं है, ये अंडरलाइन करे, राजयोग के मार्ग में कर्म विघ्न नहीं है, रादर कर्म इंस्ट्रूमेंट है, वे ऑफ लिविंग है हमारा। इस कर्म में ही सारे विश्व में बाप प्रत्यक्ष होना है, हमारे कर्मों के द्वारा शो होगा कि कर्म दूसरे भी करते हैं, ये भी कर्म करते हैं। तो राजयोगी कर्म के अधीन होकर कर्म नहीं करता, कर्म पर राज करता है। हमें काम करना पड़ता है नहीं, हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि इस संसार का हर कर्म हम राजयोगियों की शक्तियों से छोटा है। राजयोगियों के अंदर अनंत शक्तियां होती है, इसलिए हम कर्म चोर नहीं हैं, कर्म से भागते नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए कर्म ही पूजा है। हम कर्म प्रीत करते हैं कर्म से, हमारा कर्म सेवा है, हमारा कर्म विश्व कल्याण है। तो ये राजयोगी लाइफस्टाइल है जो कर्म का त्याग नहीं कर सकते। कोई के घर से ऐसी रिपोर्ट नहीं आती है राजयोगी बनने के बाद कि जब से ये आश्रम आने लगी है ना, आने लगे है ना, ये तो आलसी हो गए, ये काम छोड़ दिए। नो, हम काम नहीं छोड़ते, काम के अंदर जो विकार आ गए है दुनिया में उन विकारों का त्याग करते हैं, परिवार नहीं छोड़ते, मोह छोड़ते, कमाना नहीं छोड़ते, लोभ छोड़ते, निभाना नहीं छोड़ते, अहंकार छोड़ते। तो कर्म का त्याग नहीं है, विकारों का त्याग हमने किया है। राजयोगी लाइफस्टाइल है कर्मयोगी। दसवां पॉइंट, राजयोगी के लिए संग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राजयोगी कुसंग से स्वतः बच जाता है। कोई कोई कहते हैं कि हमारे दोस्त बड़े खराब है, हमारे रिश्तेदार ऐसे है वैसे है, लेकिन हमारा लंबे काल का अनुभव ये कहता है कि आप अगर अपनी रुचियां बदल लेते हैं, इंटरेस्ट चेंज कर लेते हैं, तो आपका सर्कल स्वाभाविक रूप से चेंज हो जाता है। आप खुद नहीं छोड़ते हैं उनको, आप पर चिंतन करते नहीं है, आप उल्टा खाते पहनते नहीं है, आप संसारिक आकर्षणों की बातों में इन्वॉल्व होते नहीं है। तो जो उल्टी वृत्तियों के लोग हैं, उनको आपके संग में मजा आना बंद हो जाएगा और वो अपने आप किनारा करने लगेंगे। और जिनको प्रभु चिंतन में आनंद आता है, जिनको सादगी, व्यवस्था, डिसिप्लिन, दिव्य गुण पसंद है, वो आपके अंग संग अपने आप आने लगते हैं। तो एक राजयोगी को अपना सात्विक संग दूसरे को देना है, वातावरण बनाना है, ना कि दूसरे के संग या वातावरण से प्रभावित होना है। कोई कोई ब्राह्मण भाई बहने जिन पर कोई माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, लेकिन मालूम नहीं उन्हें पड़ता, वो बाहर के मायावी संग से तो निकल चुके होते हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार के अंदर भी एक छिपा हुआ, भेष बदला हुआ कुसंग क्रिएट कर लेते हैं। वो अब संसार की फिल्मों की फैशन की बातें तो नहीं करते, लेकिन अगर अंदर से योग बल के द्वारा इंटरेस्ट परिवर्तन नहीं किए, देह अभिमान की जो सुरसा है वो अभी खड़ी हुई है, तो ब्राह्मण परिवार में भी कोई दो से चार से इससे उसके मिलके इधर की उधर, उधर की उधर, जिसको बाबा पर चिंतन कहते हैं, या फिर साकार में बाबा उसको सुनहरी टोली का नाम दिया करते थे। वो दो चार लोग आपस में जब भी मिलेंगे ना, पता है फलाने ने क्या किया, पता है दीदी ने क्या किया, यज्ञ की निंदा, ब्राह्मणों की निंदा, महा 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 पाप है, इसको भी कुसंग कहा जाता है। तो राजयोगी इस तरह के कुसंग में भी कभी नहीं आते। आपस में मिलते हैं तो या ईश्वर चिंतन या मुरली का चिंतन वर्णन या सेवा का वर्णन या फिर नए विश्व के निर्माण की योजनाएं बनाते हैं, नहीं तो साइलेंस में रहते हैं। उनके मुख से कभी भी पर चिंतन की धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। पर चिंतन की धारा उनके मुख से प्रवाहित होती है जिनकी आंखें कभी टीवी पर, कभी अखबारों पर, कभी गंदे चित्रों पर, या फिर इंटरेस्ट होता है इसकी उसकी घरेलू कहानियों में। यहाँ भी हमने देखा बार बार मौन के लिए अनाउंस किए जाने के बावजूद भी अगर हर क्लास के बाद साक्षी होकर नीचे से सबको सीढ़ियां उतरते देखो तो हर एक के साथ एक निश्चित है, कम से कम। वो एक दूसरे को देखते वो आया नहीं, वो आई नहीं, तू कहाँ रह गई थी, डायरी उठा रही थी, जल्दी आ, हर एक को एक कान मिला हुआ है क्योंकि कोई स्थूल बात करनी। ज्ञान चिंतन तो किसी के साथ भी किया जा सकता है, पर चिंतन के लिए एक निश्चित वॉश बेसिन चाहिए उल्टी करने के लिए, क्योंकि मौन तोड़ना है तो एक निश्चित चाहिए। मौन मन के आनंद की अवस्था है जिसके लिए स्थूल चिंतन की उतनी आवश्यकता नहीं होती। अगर ज्ञान की गहराइयों में डूब जाओ तो मौन स्वाभाविक हो जाना चाहिए था, लेकिन जब आध्यात्मिक उन्नति के लिए आते हैं तब इस तरह के सहारों से भी मुक्त हो जाना चाहिए। आज अभ्यास करके देखना कि यहाँ से उठें तो अपना कोई अंगी संगी देखे बिना बाबा का हाथ पकड़ के तीर की तरह रिफ्रेशमेंट लेके वापस आ गए। हो सकता जिसको लगता है बिल्कुल अकेले हम किचन तक जा भी सकते आ भी सकते, हाथ खड़ा करो अकेले बाबा के साथ, फिर उसको प्रैक्टिकल करना संग बाबा का। 11वां पॉइंट, राजयोगी दिव्य गुणों की खान होता है। राजयोगी की दिनचर्या है शांति का अवतार। आज भी बाबा ने कहा लौकिक को अलौकिक बनाओ, घर को मंदिर बनाओ, ऐसे आकर्षण मूर्त बनो जो आपका घर मंदिर दिखाई पड़े। तो दिव्य गुणों के बिना हमारा राजयोगी जीवन कंप्लीट नहीं होता। ये राजयोग के चार पिलर्स में से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पिलर भी है और अपने चार सब्जेक्ट्स में से एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भी है। चार सब्जेक्ट्स के नाम बोलेंगे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। धारणा मीन्स दिव्य गुणों की धारणा। चार पिलर बोलेंगे, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, सत्संग, दैवी गुण। जिनको पक्के नहीं है पक्के कर लो। चार सब्जेक्ट अपने आप से सभी बोलें, ज्ञान। सारे नहीं भूल रहे हैं, सबको नहीं आता है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। धारणा में ऐड करना है दिव्य गुणों की धारणा। चार सब्जेक्ट ये है और चार पिलर्स राजयोग के, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, सत्संग और दैवी गुण। ये बेसिक है राजयोगी लाइफ के बेसिक्स पर। हम एबीसी पर आज बात कर रहे हैं, पर वो भी महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं एबीसी सीखने में भी पूर्णे डालना भूल जाते हैं तो वह आड़ा तिरछा कर देते हैं। तो दिव्य गुणों में अगर हम शांति का अवतार नहीं बने, प्रेम की मूरत नहीं बने, धीरजवान क्षमाशील नहीं बने, सहनशीलता से नहीं सजे, तो लोग हमें राजयोगी मानने से इनकार कर देंगे। तो राजयोगी के लिए कंपल्सरी है क्रोध का त्याग, संपूर्ण त्याग, संपूर्ण शांति का अवतार, संपूर्ण नफरत का त्याग करके संपूर्ण प्रेम अवतार, सबकी गलतियों को माफ करने वाला, क्षमाशील, धीरजवान। समस्याएं आएंगी, पहाड़ टूटेंगे, घबराने वाले नहीं। भगवान हमारा साथी है, भूलने वाले नहीं। उसी को कहा जाता है राजयोगी, जो इसी जीवन में दिव्य गुणों की मूरत ऐसी तैयार हो जाए जो उनके देखने वाले कहें, अरे आप तो पूरे देवता हो, आपके घर आकर के तो लगता है किसी मंदिर में आ गए हैं। चाहे कोई मूर्ति रखी ना हो, ओम जय जगदीश रे ना होता हो, तो भी उनके मुंह से निकले आप चेतन मूर्ति को देख करके कि आपका दर्शन करके चैन आ गया। ये है राजयोगी लाइफस्टाइल। ऐसे नहीं किसी राजयोगी को कोई याद कराए, बस बस बात खत्म करो, हम शांति बहस ना करो। ये किसी राजयोगी को कोई रिमाइंडर देवे, नो, ओम शांति करो, ओम शांति, हाँ हो गई ओम शांति, तुम चुप करो, इसको सीधा करने दो, ओ नो। इस तरह के रिएक्शंस राजयोगी के नहीं, डबल अंडरलाइन, नहीं हो सकते। बारहवां पॉइंट, ट्रैफिक कंट्रोल। राजयोगी के लिए जितना एकांत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लंबा एकाग्र होकर बैठे, उतना है फिर हर थोड़ी देर बाद, एक घंटे बाद, एक मिनट अंतर्मुखी होकर के शांत हो जाना। हमें मालूम है बहुतों के मोबाइल में ट्रैफिक कंट्रोल है, घरों में कईयों के ट्रैफिक कंट्रोल मशीन है, सेंटर्स पर भी है, और वो बजती भी है। अब सारे हंस रहे हैं, वो बजती भी है पर हमारे पास टाइम नहीं होता है। ऐसा और कोई बात नहीं है, हम जरा बिजी होते हैं, है ना। और अगर वो वाला एक मिनट रुक जाए तो मुसीबत आ सकती है, इसलिए हम लोग रुकते नहीं है, क्योंकि हम बहुत बिजी आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, बहुत ज्यादा काम है हमारे ऊपर। कितना भी काम हो लेकिन एक घंटे में एक मिनट अवश्य रुकें, ठहरें, मन के विचारों को धीमा करें, अंतर्मुख हो बाबा को देखें, तो महसूस करेंगे कि विचारों की गति धीमी करते ही अगले कर्म की गति तेज हो जाती है। न सिर्फ गति तेज होती है, कर्म में होने वाली गलतियां समाप्त हो जाती है। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल अवश्य करें। समय पूरा होता है, मैं बाकी के सिर्फ नाम सुनाती हूँ, फिर आपका ब्रेक होगा। राजयोगी के लिए महत्वपूर्ण है 13वां पॉइंट, चार्ट अवश्य लिखना। कल गुप्ता जी ने इसके बारे में समझाया है। 14वां पॉइंट है, कोई गलती हो जाने पर प्रायश्चित पत्र लिखना, निमित्त को लिख कर देना, ये भूल हो गई माफ करना। जो आज लिखा बार बार लिखें, अनुभव किया होगा, उससे हल्के भी होते हैं, क्षमा भी मिलती है। 15वां पॉइंट, त्यागी और वैरागी होकर के रहें। धन के, पदार्थ के, लोभ के पीछे छोटे छोटे विकर्म करते रहे नहीं। राजयोगी त्यागी होता है और बेहद का वैरागी होता है। 16वां पॉइंट, राजयोगी के लिए महत्वपूर्ण है नष्टो मोहा होकर रहना। उसका फ्रेज है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, दूसरे तेरे हैं और मैंने तेरों से केवल निभाना है, मेरे तो केवल तुम हो। 17वां राजयोगी का फर्ज है ज्ञान दान देना। आज जिसको बाबा ने कंठी वाला तोता कहा, जो हमारे चार सब्जेक्ट में चौथा सब्जेक्ट है सर्विस, बाबा से मिली हुई प्राप्तियों का रिटर्न देना, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए तन मन धन वाणी कर्म से सेवा करना। 18वां पॉइंट है, ट्रस्टी होकर रहना। ट्रस्टी होकर रहना माना धन की पवित्रता। धन को ईश्वरीय अमानत समझता है राजयोगी। धन है, संपत्ति है, मेरा नहीं तेरा है, और तेरे में से केवल मैंने यूज करना है। धन के पांच हिस्से करते हैं, एक हर महीना सेंटर की भंडारी के लिए, दूसरा बैंक में इमरजेंसी अपने खर्चों के लिए, तीसरा हिस्सा अपने पर्सनल खर्चों के लिए, चौथा हिस्सा अपने पर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनके खर्चों के लिए, اور پانچواں حصہ مدھوبن کے لیے اپنے انکم میں سے یہ پانچ حصے کر کے دھن میں ٹرسٹی ہو کر رہنا، دھن کی پوترتا پر دھیان دینا، ایمانداری سے کمانا، امانت سمجھ کر خرچ کرنا۔ انیسواں، بابا کو روز لو لیٹر لکھنا، پریم پتر آتا ہے مرلی اور ہم کو لکھنا ہے بابا کو چھ چار لائن آٹھ لائن کا پریم پتر، کبھی کس سمبندھ سے کبھی کس سمبندھ سے، جو بھٹی میں ہم کو کام ملتا ہے۔ اور پھر بیسواں پوائنٹ ہے، راتری سونے سے پہلے گڈ نائٹ کر کے سلیٹ صاف کر کے بابا کو پوری رپورٹ دن چریا کی دے کر کے، شریر کو بستر پر لٹا کر کے خود اینجل بن کے وطن میں بابا کی گودی کے بستر میں بابا کے کرنوں کی چادر اوڑھ کر کے ہی سونا، یہ ہے راج یوگی لائف سٹائل۔ ایک منٹ سائلنس کریں گے۔